परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदना करते हुए पद्म पुराण कथा प्रसंग में गुरु की महिमा की बात जब आती है तो गुरु कहता है कि दीप को जलाओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की तरफ प्रयाण करो, क्योंकि जो अंधेरा है वह अज्ञान का प्रतीक है और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, एक्सीडेंट होता है। तो जो लोग जिनके जीवन में अंधेरा है वह धुंधुकारी की तरह से है, क्योंकि उन्हें कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। अंधेरे में व्यक्ति का पैर जाकर कहीं न कहीं खड्डे में पड़ जाता है और गिर जाता है, और कहीं कहीं जान जाने की बारी आती है। जान आने की बात कौन कहे, जान चली जाती है। तो जान को बचाना है यदि, तो प्रकाश की उपासना हमें करनी होगी। वह कौन सा प्रकाश है? क्या एक सामान्य दीप का प्रकाश है? क्या ये फटाकड़े ये पटाखों का प्रकाश है? नहीं, ये तो धुंधकारित्व का निदर्शन है। अच्छा, आवाज नहीं। ये पैसे की दिवाली है और दीपों का जो उत्सव है वह ज्ञान दीपोत्सव है, और जहां अज्ञान है वहां प्रदर्शन है। जो अंतरदीप होता है, अंतःकरण का दीप होता है, उसके सामने आने वाले व्यक्ति को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जो दीप बाहर दिखाने वाला प्रदर्शन दीप होता है वह दूसरों को जलाता है, वह घरों को जलाता है, वह दिल को जलाता है। ये जो दीपित करने की बात है, हमारे यहां तो होलिका भी जली थी, जो प्रहलाद को लेकर के जलाने के लिए बैठी थी, वरदान का दुरुपयोग किया। तो महात्मा और मंदिर, इन दोनों की अपनी अपनी प्रतिष्ठाएं हैं, और मंदिरों की मर्यादा इस कलिकाल में बाधित हो जाएगी ऐसे ही लोगों से। लिखा है कि मंदिरों, स्वामी कर्पात्री जी का यह घोष था, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे और शासन विधान शास्त्रीय हो। आज ये दोनों ही चीजें नहीं दिखाई पड़ रही है। महापुरुष लोग जानते थे कि कलिकाल में ये सब बाधित होगा, क्योंकि जहां मंदिर हो वहां हमें जाते समय सावधान होना चाहिए, यह देवालय है। लेकिन वो संस्कार जब माता पिता से पड़ता है तब वह ग्राह्य होता है, अन्यथा वह ग्राह्य नहीं होता है। माता पिता यदि ऐसे हो तो संतानें भी ऐसी होती है। संपूर्ण पुराणों का सारांश यही है कि व्यक्ति सज्जन बने। हमारी सज्जनता यह है कि हम दूसरे को अवसर दे करके उसके सम्मेलन में भाग ले लेते हैं, हम तेरे साथ हैं, तू कर ले जितना करना है। क्योंकि धुम धुम कर्तुम शीलम अस्यति धुंधकारी, जो जलाए नहीं, धुएं जैसा फटाकड़ा फोड़े और लोगों के हृदय में उत्पात मचा दे, सत्कार्य न करने दे, उसे धुंधकारी कहते हैं। लेकिन महात्माओं का धैर्य की परीक्षा होती है ये कि वो क्या उसको अवसर देते हैं कि नहीं। तो आश्रमों में बतलाया कि मंदिरों में दीप दान की विधि है। मंदिर में जाकर के यदि आप दीप दान करते हैं तो दीप दान से ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या मतलब जिन्होंने वेद इत्यादि स्मृतियों के पाठों को नहीं करने दिया है वो भी ब्रह्म हत्यारे हैं। जिन्होंने शब्द ज्ञान में बाधा पहुंचाई वह भी ब्रह्म हत्यारे हैं, और जिन्होंने एक पढ़े लिखे ब्राह्मण को मारा वह भी ब्रह्म हत्यारा है, और जिन्होंने सतशास्त्र का प्रतिपादन नहीं करने दिया वो भी ब्रह्म हत्यारा है, क्योंकि उसको रोका। तो ब्रह्म हत्या का पाप दीप दान से नष्ट हो जाता है यदि हम देवालय में दीप दान करते हैं तो। गाय हत्या, गाय कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी व्यक्ति के चलते मर गई हो। आजकल पॉलोथीन, कूड़ा, कचरा ये सब हम फेंक देते हैं, उससे भी बहुत सारे गायें हैं उस चारे घास के लोभ में खा लेती है और वो मरती है। तो कहीं ना कहीं से जाने अनजाने में ये सब हो जाता है। कहीं न कहीं गायों के लिए चारा हम नहीं देते हैं, गायों का रक्षण हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यह ईश्वरीय संविधान है। भारत का संविधान वो दूसरा लोकतंत्र है, लेकिन जो हमारा लोकतंत्र है उसमें इंद्र, वायु, यम, कुबेर, अग्नि ये सभी देवता, सूर्य आदि देवता ये हमारे लोकपाल हैं, यह सबको समान रूप से पालन करते हैं। प्रजा का तंत्र तो मात्र एक नियम बना दिया कागजों पर, उसका अनुपालन नहीं कर सके। लेकिन जो लोक, असली लोक है, वह हमारे लोकपाल जो इंद्र इत्यादि देवता है वह लोकों का पालन करते हैं। पर्यावरण स्वरूप में हमको प्रकृति ने जल दिया है, तेज दिया है, वायु दिया है, आकाश दिया है और भूमि दिया है। ये जितने भी तत्व हैं यह सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, और इसे दूषित करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यदि हम दूषित करते हैं तो हमें वो ब्रह्म के द्वारा प्रतिपादित सृष्टि में ब्रह्म हत्या जनित पाप लगता है, और उससे यदि हमें छुटकारा पाना होगा तो हमें दीप दान करना होगा। और वह दीप दान कैसा है, घी का दीप उत्तम होता है, उसके अधम जो है तिल के तेल का होता है, और उससे थोड़ा सा अधम सरसों के तेल का होता है। अन्य भी नारियल इत्यादि के तेलों का हम दीपदान कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम गाय के घी का जो दीप है उससे व्यक्ति को लाभ होता है। क्योंकि गाय के घी का यदि आप दीप जलाते हैं तो उससे पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए जो गाय के घी से दीप नहीं जलाते हैं, अभी क्या है दीपावली में किरोसिन की परंपरा चल पड़ी है उजाले के लिए, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऐसा करते हैं, कम खर्च में आता है, तो वो और पर्यावरण को दूषित करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के लिए जीता है उसमें, और जो व्यक्ति अपने लिए किसी प्रकार से फास्ट फूड खा करके जी रहा है वो समाज में बुराई फैला रहा है। आपके जीने का कोई हक नहीं यदि आप ईश्वरीय संविधान के अनुसार नहीं जीते हो। जैसे भारत के लोकतंत्र के अनुसार कोई नहीं जीता है तो उसे चोर पकड़ उसको ले जाते हैं, पुलिस वाले पकड़ करके, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता है उसको पकड़ के पैसा ले लेते हैं, उसी तरह से यदि आप देवताओं के संविधान के अनुसार नहीं चलते हो तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपने माता को माता नहीं समझा, पिता को पिता नहीं समझा, मंदिर को मंदिर नहीं समझा, दीपक जलाने के लिए आपने दीपक नहीं जलाए, दिल जलाए, उसका कोई मतलब नहीं, आप जीने के हकदार नहीं हो, क्योंकि आपने परमात्मा के संविधान में कहीं न कहीं से व्यवच्छेदन किया, उनके नियमों को भंग किया। जिस परमात्मा ने आपको ये इतनी सुंदर शरीर दिया है, यदि एक हाथ नहीं होता तो हम आप विकलांग कहलाते? क्या कभी विचार किया क्या कि एक हाथ टूट जाता है तो एक महीने कितना कष्ट होता है, प्लास्टर करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, और घर में कौन कौन अपने हैं पता चल जाता है। लेकिन इन्हीं हाथों से हमें जिस परमात्मा ने दिया है पांच 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 उंगलियां दिया है, वह हमें कह करके भेजा है कि पांचे पांच भूतों की रक्षा करना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आकाश को दूषित करने का हकदार हम नहीं है। करना है तो अग्नि में स्वाहा करो, घी की आहुति करो, तिल की आहुति करो, जौ की आहुति करो, दधि की आहुति करो, गोमूत्र का ब्रह्मकूर्त से हवन करो, इससे पर्यावरण शुद्ध होगा। आज के वैज्ञानिक भी यह अपने यंत्रों के द्वारा चेक कर लिया है कि जब होम होता है तो ऊपर के आकाश का जो वायुमंडल है उसमें जो परावैगनी किरणें आती है, सूर्य की किरणें जो हमारे लिए नुकसान करती है, उसको रोकने के लिए जो आवरण है वो मजबूत होता है। इसका मतलब हो गया कि हमारे ऋषियों ने विज्ञान वैज्ञानिक कार्य किया है। ये तो हमारी कमी है कि हम उसमें विज्ञान ढूंढते हैं, हेतुवाद धर्म में नहीं चलता है। माता ने कहा बेटा प्रणाम करो तो उसमें यह पूछने की जरूरत नहीं, क्यों करूं, नहीं करूंगा। गुरु ने कह दिया बेटा वहां जाकर के पुष्प ले आओ, वहां नहीं पूछना है क्यों करूं। माता, पिता और गुरु, ये तीने तीन जो है ना हमेशा हित ही चाहते हैं, कभी अहित नहीं चाहते हैं। अब आप सोचोगे कि हमसे कुछ दिन भर काम कराते रहते हैं तो वो काम करने से जो आपके मन का जो रजोगुण है वह शांत हो जाता है और आप निर्मल हो जाते हो। जैसे मेघ बरसात के बाद निर्मल हो जाते हैं और आकाश स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह सेवा भाव से अंतःकरण में जो रजोगुण है वह नष्ट हो जाता है। कहा भागवतकार ने, मार्जनात् कृष्ण गेहस्य मनोविक्षेपकम् रजः। जो मन में विक्षेप होता है, जो पाप होता है, हमें सत्कार्य करने नहीं देता है, उस रज को मार्जन करने के लिए हम मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं। जब मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं तो हमारा जो अहंकार है वह नष्ट होता है, हमें सेवा वृत्ति आती है, हमें समर्पण भाव आता है, और जब सेवा और समर्पण आता है तब सहिष्णुता भी पैदा होती है, सहन शक्ति पैदा होती है, और जब सहन शक्ति पैदा होता है तो हमारे अर्थ